हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 11। इन परम पवित्र शब्दों को उच्चारण करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माध्यस्य यतोन वयादितरतश चार्थीष्वभी क्यह स्वराट तीने ब्रह्मरिदाय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकै तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्रवस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रिद्ध्यवरुध्यति तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरी हरी। ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर इस जीवन में प्रदान किया है। हम नैमिषारण्य के ऋषि मुनि जो सुत्त गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं उनके विषय में पढ़ रहे हैं, तो श्लोक नंबर 9 में उनका पहला प्रश्न ऋषि मुनियों ने किया था सुत गोस्वामी से। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवतात् यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्नः शंसितुमर्हसि। हे दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त, आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के लिए के कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। मतलब साधारण लोग ऐसा क्या करें, कोई कौन सा साधन अपनाए जिससे वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सके। उसके उपरांत मुनियों ने कलयुग के प्राणियों की दुर्दशा के विषय में बताया कि उनमें बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे दोष हैं, जिसकी वजह से वो सही ज्ञान को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और सही इसलिए इन साधारण लोगों के ऊपर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सब कुछ जानते हो, आप बताओ, क्योंकि जो आप कहोगे ना वही निश्चित रूप से सत्य होगा, वही निश्चित रूप से ग्राह्य होगा। इसलिए बोला था ना, भवता यद्विनिश्चितम्, आपने जो निश्चित किया है वो सही होगा। बाकी यहाँ कलयुग में तो मंद लोग मंद हैं, मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, विपद्र हैं, तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते, आप बता दीजिए। तो फिर उसके बाद भी सुत गोस्वामी ने उत्तर नहीं दिया, तो फिर ऋषियों ने सोचा कि शायद सुत गोस्वामी सोच रहे होंगे कि ये लोग शास्त्र क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, तो शास्त्र पढ़ना चाहिए ना, इनको मुझसे पूछ रहे हैं। तो फिर अपनी इस विवशता, यानी हमारी, हम कलयुग के लोगों की इस विवशता को सही तरह से बताते हुए वो आज द्वितीय प्रश्न, सेकंड प्रश्न कर रहे हैं। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। ऋषिगण कह रहे हैं, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शब्दों का अर्थ देखिए। भूरि भूरि कर्माणि, भूरि का मतलब होता है मतलब बहुत बहुत इतनी ज्यादा चीजें, क्योंकि शास्त्र जब हम खोलेंगे तो उसमें एक चीज थोड़ी लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें और लिखी हुई है, बहुत सारे साधन लिखे हुए हैं उसके साथ प्लस भूरि कर्माणि। अगर एक साधन को भी हम जुटाएं, जैसे समझो शास्त्र में क्या लिखा हुआ, यज्ञ दान तपस्या सब सारी चीजें कल्याण के लिए लिखी हुई है। अब उसमें से खाली अगर एक यज्ञ को उठाएं तो यज्ञ करने के लिए खाली ऐसा थोड़ी है कि बस बैठ जाएंगे और यज्ञ कर रहे हैं, उसके लिए कितने सारे कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए सामग्री चाहिए, उसके लिए देश काल प्रस्तुति ये और पात्र चाहिए, सुपात्र ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए तेल चाहिए, उसके लिए इतनी सारी दूसरी चीजें चाहिए, उसके लिए सही समय चाहिए, उसके लिए एक स्थान चाहिए। तो एक कर्म भूरी भूरी कर्माणि, एक तो चीजें बहुत सारी लिखी हुई हैं और एक कार्य जब हम करते हैं तो उस एक अगर उसमें से उठा के करेंगे तो उसको करने के लिए भी बहुत बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे कर्मों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे कर्तव्य हमें पालन करने पड़ते हैं शास्त्र की एक बात को मानने के लिए। और उसके बाद श्रोतव्यानि विभागश, श्रोतव्यानि मतलब सीखने के योग्य, विभागश यानी विषयानुसार। अब और दूसरा ये कि इसके इतने सारे विभाग हैं, ऐसा थोड़े कि एक शास्त्र में बस एक ही टॉपिक पर बात होगी, थोड़ी देर के बाद थोड़ी टॉपिक पे बात होगी, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इतने सारे विभाग हैं और सीखने के लिए बहुत कुछ है उसके अंदर, इतने अलग अलग विषय हैं। अब वो सही तरह से समझ में आएंगी नहीं क्योंकि समय कम है ना, उम्र पहले ही बता दिया ना, त्रायण अल्पायु, उम्र इतनी कम है। और मंद मतयो का मतलब होता है बुद्धि कम है, लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इन्होंने यूज किया है कि सुमंद मतयो, बहुत बहुत बुद्धि कम है। अब यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग और बुद्धि योग का वर्णन किया, लेकिन तीसरे अध्याय में फौरन अर्जुन ने कहा जायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धे शनातन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तुम कर्म को जब ना बुद्धि को जब कर्मयोग से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो कि इतने खतरनाक कर्म करो। मैं भगवान को स्वयं वक्ता भगवान है, भगवान बताने वाले हैं और सुनने वाला कोई साधारण प्राणी नहीं, साक्षात अर्जुन जो नर है और भगवान नारायण है, भगवान के मुख से सुना जा रहा है और भगवान का शुद्ध भक्त प्रेमी, भगवान ने खुद कहा भक्तों सी में सखा चैती, तुम मेरे प्रेमी हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो वो भगवान बता रहे हैं और उनके मित्र सुन रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। आपने जो इतना मिश्रित करके बता दिया, मेरी तो बुद्धि ही मोहित हो गई है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप एकांतक श्रेय बताइए, निश्चित करके एक बताइए कि करना क्या है मुझे। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब साक्षात भगवान बताने वाले हैं फिर भी कलयुग के प्राणी, वास्तव में अर्जुन का ये प्रश्न नहीं था, अर्जुन चाहते थे कि हम साधारण लोग जो बिल्कुल भी शास्त्र को नहीं समझ पाते हैं, अपने कल्याण का मार्ग नहीं खुद से डिसाइड कर पाते हैं, तो हमारे लिए प्रश्न था। और वाकई में यहाँ पर भी सोने का अधिक ऋषि यही कह रहे हैं कि श्रोतव्यानि विभागश, इतने सारे विभाग मिश्रित करके बताए गए हैं शास्त्रों में कि हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती है। तो अतः साधो त्रयत् सारम, अतः मना इसलिए, इसलिए तो किस लिए, क्योंकि एक तो शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, दूसरा एक बात को करते हैं तो भी उसमें बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, तीसरा उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग तरीकों से बात की गई है, अतः इसलिए साधो, साधो का मतलब होता है हे साधु, हे भक्त। आज फिर सुत गोस्वामी को संबोधन दे रहे हैं कि आप बहुत साधु हो। साधु का नेचर क्या होता है कि वो एकदम सरल होता है, एकदम सरलता से जो कुछ ग्राह्य होता है वो आपको निकाल के दे देता है। क्योंकि साधु का मतलब सादा, सीधा साधा रिप्लाई करने वाला शुद्ध भक्त, क्योंकि फिर वो क्या करता है, वर्ड जगलरी नहीं करता, वो आपको गोल नहीं घुमाता, शास्त्र में से सीधा साधा अर्थ निकाल के आपको दे देता है। इसलिए कहा अतः साधोत्र यत् सारम, इसलिए क्योंकि आप साधु हो और हमें सिंपल सा उपाय बता सकते हो कि कैसे हमारा कल्याण होगा, तो यत् सारम, सारम का मतलब होता है जो कुछ सार है, जो कुछ निष्कर्ष है, जो कुछ निचोड़ है शास्त्रों का। अतः साधोत यत् सारम समुद्रित्य मनीषया, समुद्रित्य का मतलब होता है चुनाव करके। आपने बहुत सारा पढ़ा है ना ये सारे शास्त्र, इसके अंदर अलग अलग विभाग, उसके अंदर अलग अलग कर्म, उसमें से जो शास्त्र का सार है, जो मर्म है, जो निष्कर्ष है, वो चुनाव करके, वो चॉइस करके, मनीषया मतलब अपनी, मनीषय मतलब अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, जो आपका मन, आपकी बुद्धि जिस चीज को ग्रहण कर गई है, आपने जो समझा है कि यही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या यही चीज ग्राह्य है, ऐसी यही साधन सही है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो ब्रूही। यहाँ पर वापस एक रिक्वेस्ट करते हैं, बोलिए ना, बताइए ना, कृपा करके आप प्रवचन कीजिए, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं, उनके अलग अलग विभाग हैं, उनके अंदर अलग अलग कर्मों के विषय में कहा गया है, हमारी बुद्धि, हम साधारण व्यक्ति ये सब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस तरह से क्या होगा, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तो हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसी क्योंकि आप साधु हो तो सार निकाल के, जो 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 आपने पढ़ा है उसका निचोड़ निकाल के, यत्सारम ब्रूही, ब्रूही भद्राय भूताना, भद्राय का मतलब होता है कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, भूताना, हम जो मनुष्य इस संसार में भूतों की तरह घूम रहे हैं, क्या जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। शास्त्र कहता है जिसके हृदय में भगवान की कथा नहीं है, जो भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, उसका जीवन वो तो जीते जी मरा हुआ है। तो हम सब जो भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते, भगवान के लिए अपने प्रेम का निर्माण नहीं करते, तो चलती फिरती लाश है, जीवन शव समान सो प्राणी, चलते चलते फिरते मुर्दे यहाँ पर चल रहे हैं, तो सब भूत हैं। तो यहाँ पर बताया इन भूतों के कल्याण के लिए, ब्रूही भद्राय भूतानाम, जीवों के कल्याण के लिए आप कहिए, कृपया बताइए, क्योंकि आप बता सकते हो, ब्रूही यानी कितना प्रेम से कह रहे हैं, बताइए ना हमें कि वास्तव में क्या श्रेय है, और समस्त भूत प्राणियों यानी जीवों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है। ये नात्मा सुप्रसीदति, वास्तव में प्रश्न ये है, ये नात्मा, ये न मना जिससे आत्मा, मना आत्मा सुप्रसीदति, बहुत प्रसन्न हो जाती है। वास्तव में हम जो भी यहाँ पर संसार में कार्य करते हैं प्रसन्नता के लिए, उससे हर्ष हो रहा है, देखिए, हर्ष और प्रसन्नता दो अलग अलग चीजें हैं। हर्ष कैसे होगा, जैसे आपको भूख लगी है या आपको आपको कोई स्पेशल डिश खाने का मन कर रहा है और आज मम्मी ने वही चीज बना दी, तो आप प्रसन्न, आपसे क्या होगा, हर्ष हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। लेकिन उससे क्या होगा, आप उस टाइम के लिए आप खुश हो गए, ठीक है, वो आपने खा ली, फिर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे वो दिन खत्म हो गया, वो वाला हर्ष आपका समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि अब वो वाला हर्ष आपका समाप्त नहीं होगा, वो उस टाइम के लिए आपको खुशी मिली लेकिन वो इटर्नल नहीं है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं येन आत्मा सुप्रसिद्धति, क्योंकि आत्मा इटर्नल है और संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं वो इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, समाप्त हो जाने वाले हैं, क्षणिक हैं। तो फिर आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय है, वो कौन सा इटर्नल साधन है, साध्य, जिसको प्राप्त करके आत्मा प्रसन्न हो जाती है। ये नात्मा सुप्रसिद्धति, जिसको प्राप्त करने के बाद आत्मा प्रसन्न हो जाती है, वो आप हमें बताइए। ये दूसरा प्रश्न है, तो इसका थोड़ा सा लिंक है पहले वाले प्रश्न में, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा था, समस्त शास्त्रों में एकांत श्रेय क्या है, यानी जितने भी शास्त्र हैं उसमें एकांत श्रेय क्या है, साधन पूछा था कि सर्वशास्त्र के सारभूत ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा कार्य हम करें, कौन सा प्रोसेस, और आज क्या पूछ रहे हैं, इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाती है, ऐसा कौन सा कार्य है जो आत्मा को प्रसन्न करता है। तो समझ में आ रहे ना दोनों प्रश्न, उसमें क्या पूछा था कि शास्त्रों की सारभूत वस्तु कौन सी है, जितने भी शास्त्र हैं उनमें एकांत श्रेय क्या है, और आज पूछ रहे हैं कि ये नात्मा सुप्रसिद्धति, कि कोई ऐसी बात बताइए, कोई ऐसा ऐसा साधन बताइए जिससे आत्मा प्रसन्न हो सके। अनुवाद देखिए, मुनिगण कहते हैं शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। मैंने ये कह रहे हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, बुरी ही बुरी कर्माणी श्रोतव्यानी विभागश, इतने सारे शास्त्र हैं और मनुष्य की इतनी अल्प आयु है, तो पढ़ते पढ़ते ही आयु समाप्त तो हो जाएगी, समझ में कुछ आएगा नहीं, अतः साधोत यत सारम समुद्रित्य मनीषया। तो आप ही बता दीजिए कि जो सार है, क्योंकि आप साधु हैं, सीधा सीधा बता दीजिए, ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्धति, इन भूतों को जीवों के कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है जिससे उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, कृपा करके वो बता दीजिए। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से तात्पर्य समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है, इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः यह कितने भी भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि हम आत्मा हैं, तो और ये शरीर जो है वो भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, तो ये भौतिक तत्वों से हमें जितना भी सुख मिल रहा है, जितना हम समझ रहे हैं खुशियां मिल रही हैं, वो सब भौतिक शरीर को मिल रही हैं। लेकिन आत्मा को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक है, क्योंकि आत्मा इटर्नल है, भौतिक पदार्थ जो है वो समाप्त होने वाले, आत्मा शाश्वत है और भौतिक पदार्थ जो है वो अशाश्वत है। तो भौतिक चीजें आत्मा को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती है, भौतिक पदार्थों से बिल्कुल आत्मा अलग है, इसलिए न अल्पे सुखम। शास्त्र कहता है जो अल्प है, यानी कि आत्मा इटर्नल है ना, कभी समाप्त नहीं होती है, कभी ना उसका क्षय नहीं होता है, और भौतिक चीजें तो सब, तो न अल्पे सुखम, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ये भौतिक पदार्थ तो कभी काम आएंगे नहीं। इसलिए देखो श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, आत्मा को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है, इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है यानी स्पिरिचुअल है, और ये संसार क्या है, पूरा मटेरियल है। तो ये मटेरियल चीजें जो है वो आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, अतः या कितने भी भौतिक आयोजन से संतुष्ट नहीं हो जाती। भले संसार की, जिसको खाने का शौक है ना, उसको संसार के सारे रेस्टोरेंट्स उसके नाम पर कर दो। जिसको कपड़े पहनने का शौक है ना, उसको सारे जितने भी यहाँ पर बुटिक्स है ना, वो सारे उसके नाम पर कर दो। जिसको है ना, और दूसरी दूसरी जो जो चीजों का शौक है ना, वो सारी की सारी सामग्री उसको उसके नाम पर कर दो, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि वो शरीर नहीं है ना। शरीर प्रसन्न हो सकता है, थोड़ी देर के लिए खुश हो सकता है, खुश हो सकता है, लेकिन प्रसन्नता वो है कि वो बिल्कुल उसके बाद उसको किसी और चीज की, वस्तु की आवश्यकता ही ना हो, उसको किसी चीज की इच्छा ही बाकी ना रहे, संतुष्टि प्राप्त हो जाए, मुतमईन हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो संसार में भौतिक चीजों से आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा इटर्नल है, भौतिक पदार्थों से उसको कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के लिए है। लेकिन शास्त्र जो है भौतिक नहीं, उसमें भौतिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक ज्ञान है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते संपूर्ण शास्त्र और आध्यात्मिक उपदेश, शास्त्रों के अंदर आप जो साधु लोग आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, वो सब आत्मा को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। विभिन्न कालों तथा स्थानों में विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपाय की संस्तुति की जाती है। अब उसमें क्या है, देश काल और अलग अलग काल के लिए अलग अलग लोग को अलग अलग उपदेश बताया। जैसे ब्रह्मचर्य के लिए क्या है कि आप ना स्त्री संग नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, और गृहस्थ के लिए क्या है कि आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान की सेवा करोगे। वानप्रस्थ के लिए अलग है, सन्यासी के लिए अलग है, तो सबके लिए अलग अलग उपदेश बताया गया है। देखो यहाँ पर बताया ना, विभिन्न कालों तथा स्थानों में विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं कि इसको इस तरह से, ग्रस्त जो है वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान की भक्ति करेगा, संतुष्ट करेगा भगवान को इस तरह, और ब्रह्मचर्य जो है वो तो अपोजिट सेक्स के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसको अलग से क्रिया सारा भगवान के संतुष्ट करने के लिए करना। और संन्यास जब ले लेते हैं फिर तो अपनी पत्नी और किसी से भी कोई सरोकार रखना नहीं है। तो ये सारे क्योंकि अलग अलग नियम बताए गए, अलग अलग उपायों की संस्तुति की गई है, फलस्वरूप शास्त्रों की संख्या असंख्य है। इसलिए बहुत सारा है, तो बहुत सारे शास्त्र भी वेदव्यास जी को लिखने पड़े, क्योंकि हर टाइप के लोग के लिए हर टाइप अलग अलग टाइप की बातें बतानी पड़ी। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। अब अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग कर्म हैं। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया है कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाइए। अब यहाँ पर क्योंकि हमारी जो ये स्थिति है ना, वो पतित है, अपराधी है, कोई भी अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन सही तरह से नहीं कर रहा है, तो पतित हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य अपना कार्य सही अपने हिसाब से नहीं कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, तो उसका गृहस्थ आश्रम खराब है, गृहस्थ आश्रम सही नहीं है तो वानप्रस्थ सही नहीं हो रहा है, और वानप्रस्थ सही नहीं है तो सन्यासी को तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसी कह रहे हैं कि अब इन सबके लिए जो इजी हो, ये सारे जितने भी वर्ण आश्रम है वो उसको अडॉप्ट करके कल्याण को प्राप्त कर सके, उनकी आत्मा को संतुष्ट कर सके, ऐसा कोई सार बताइए। इसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार के सुनाइए, क्योंकि इस कलयुग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति के इन विधि विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना असंभव है। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इम्पॉसिबल वर्ड इज फुलिश डिक्शनरी है ना, कि ये तो बेवकूफ लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये लोग इतने पतित हो गए हैं, कलयुग के लोग, कलयुग के प्राणी इतने पतित हैं कि वो वर्णाश्रम धर्म को जब तक, अब अगर वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करेंगे ना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने स्टेज से नीचे गिर गए तो असंभव हो गया अब उनके लिए कि इन समस्त विधि विधानों, शास्त्रों के विधि विधानों का उपदेश को ग्रहण करना, समझ पाना, पढ़ना इनके लिए असंभव है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना असंभव नहीं रह गया है, ना ही सामान्य जनता के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कलयुग के इस अवगुण के विषय में बता रहे हैं कि क्योंकि कलयुग इतना ज्यादा बढ़ गया है तो वर्णाश्रम पद्धति जो है वो सही नहीं है। अब चार वर्ण है ना हमारे, कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चार आश्रम है, कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर कोई शूद्र बना हुआ है ना, ब्राह्मण अपने कार्य नहीं कर रहा है, वो भी दूसरों की सेवा कर रहे हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो भी मतलब सेवा कर रहे हैं दूसरों की, ऐसे शूद्र कार्य कर रहे हैं, और शूद्र तो वैसे ही शूद्र हैं, और वैश्य भी ऐसे सर्विस ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट, कैसे अर्निंग की जाए, बस कोई भी अपने वर्ण में भी सही नहीं टिका हुआ, और आश्रम में जो ब्रह्मचर्य, जो गृहस्थ हैं, जो वानप्रस्थ हैं, सन्यासी, वो अपने आश्रम में भी सही तरह से टिके हुए नहीं है। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर ये लेवल बना रहता ना तो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, वो बहुत ही अच्छा होता, फिर आध्यात्मिक में उन्नति करना मुश्किल नहीं होता, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया। अब तो इतना बिगड़ गया है कि अब इसको मेंटेन करना ही इम्पॉसिबल हो गया, बिल्कुल नहीं हो सकता है वापिस से सब रीमेंटेन करना, ना ही सामान्य जनता के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। ये सब संबंध विच्छेद करना, जैसे ब्रह्मचर्य में चले जाते हैं गुरुकुल में, वहां पर जाके आप सीखते हो, और फिर वानप्रस्थ में भी संबंध विच्छेद होता है, सन्यास में भी संबंध विच्छेद होता है, बोला ये कलयुग में पॉसिबल है, ये संभव नहीं रह गया है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है, पूरा जो समाज है वो इन नियमों के बिल्कुल विरोधी है, मतलब कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट उनका माइंड ही नहीं कर रहा है कि इन वर्ण आश्रम पद्धति को स्वीकार किया जाए, तो ये सारा समाज जो है वो विरोधी हो गया है इन सब चीजों के। अगर ये शास्त्रों के अनुसार चलते होते तो फिर आध्यात्मिक उन्नति जो थी वो मुश्किल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस कलयुग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है। अब क्योंकि परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कोई अपने विधि विधानों का पालन नहीं करता है, और शास्त्रों में तो हर चीज आपके काल के अनुसार, आपके वर्ण आश्रम के अनुसार बताई गई है ना, तो फिर हम उन वर्ण आश्रम को यदि फॉलो कर ही नहीं रहे सही तरह से, तो फिर शास्त्र के आदेश को ग्रहण कैसे करें, समझ में ही नहीं आएगा। इस तरह तो सामान्य जन, जो हम सामान्य लोग हैं, हमें पता ही नहीं है हमारा वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, बस ऐसे जी रहे हैं, तो सामान्य लोग हैं, तो आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मनुष्यों ने इस विषय को, श्री सूत गोस्वामी, अच्छा मुनियों ने, अब क्योंकि बहुत कठिन है तो मुनियों ने क्या सूत गोस्वामी से इस विषय के बारे में डिस्कस की है, श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा और क्या बोला है उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की जाएगी। जो ऋषि मुनि होते हैं वो जन सामान्य के कल्याण के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं, इसलिए वो देख रहे हैं कि कलयुग के सारे लोग अपराधी हो गए हैं, अपने वर्णाश्रम का सही तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका आध्यात्मिक उत्थान, उनकी आध्यात्मिक प्रगति, उनकी आध्यात्मिक उन्नति जिससे वो वास्तव में संतुष्ट हो सकते हैं, अब इस दशा को देखते हुए बिल्कुल असंभव हो गया है, क्योंकि शास्त्र बहुत सारे हैं। भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश, इतने सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे विभाग हैं, सुनने में उनकी उम्र बीत जाएगी, समझ में कुछ आएगा नहीं, और कर तो कुछ पाएंगे नहीं, उसको फॉलो समझ में कैसे करेंगे, जब समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फॉलो करेंगे। तो क्योंकि अतः साधोत्रयत सारम समुद्धित्य मनीषया, तो ये जो साधारण मनुष्य है जो वाक्य में नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मनुष्य योनि है और हम समझ रहे हैं, तो इनके लिए एक सारभूत वस्तु निकाल के दे दें। शास्त्रों में हम सब मिलकर, अब इतने सारे ऋषि मुनि हैं और यहाँ पर सुत्त गोस्वामी उनको बता रहे हैं, तो ये जो बात बताएंगे ना, वो वाकई में हमारी संतुष्टि के लिए होगी, वाकई में हमारी आत्मा, क्योंकि आज तक हम जितने भी हम सब कार्य कर रहे हैं संतुष्टि के लिए, हम सब कार्य कर रहे हैं प्रसन्नता के लिए, लेकिन आज तक अपने आप को शरीर मानकर शरीर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते आए हैं। तो यहाँ पर साधु लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये नात्मा सुप्रसिद्धति, क्योंकि ये भौतिक जो जन सामान्य है वो अपनी आत्मा के विषय में नहीं जानती है कि मैं आत्मा हूँ। तो आप क्योंकि सब कुछ जानते हो, जितने भी छात्र हैं वो पढ़े हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं उनका ज्ञान आपको पता है, सारे वेद पुराण उपनिषद के ज्ञाता है, तो आप एक सारभूत वस्तु बताइए कि जिससे आत्मा प्रसन्न हो सके। तो ये हमारा सेकेंड प्रश्न था। कल हम ऋषियों का तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर और सबसे सुंदर प्रश्न है। यहाँ से उन्होंने रियल आध्यात्मिक ज्ञान में पहला कदम रखा है, और बहुत ही सुंदर, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है ना वो है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ये प्रश्न एटलीस्ट याद करिए, लेकिन दो या तीन भक्तों के अतिरिक्त और कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं देता है, ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरी ही कमी है, जो मैं आप लोगों को सही तरह से नहीं समझा पाऊंगी। अगर नहीं समझा पा रही हूँ या ये नहीं बता पा रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट ये जो श्लोक है ना, जो प्रश्न वाले, वो श्लोक कंठस्थ करो, कंटेस्ट नहीं तो भी देख के भी रीड करके बताओ, एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि कितने सारे लोगों ने भागवत महापुराण पढ़ा है या सुना है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि कौन से प्रश्न है और पहले चैप्टर में, ये भी किसी को पता नहीं है। और ये तो दुर्भाग्य है ना कि हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा, बस ऐसे टाइम को पास करने के लिए ये कर रहे हैं। हम जो पढ़ते हैं वो हमें पता होना चाहिए। साधारण भौतिक स्कूल में भी यदि आप जाते हो तो टीचर आपसे प्रश्न पूछती है, तो आपको याद होना, याद रखते हो आप कि ये मेरे से टीचर ये प्रश्न का ये उत्तर है, प्रश्न भी पता होता है उत्तर भी पता होता है। लेकिन यदि आप, कितनी हमारी हमारा दुर्भाग्य है कि साधारण स्कूल के किसी चैप्टर के प्रश्न को हम सदैव याद रखते हैं और पूरा ईयर उसको रटते हैं इस प्रश्न का। हमारे बच्चे क्या करते हैं पता है, प्रश्न भी खुद बताते हैं फिर आंसर भी खुद बताते हैं, ऐसे से उनको याद होता है। लेकिन ये जो भागवतम के प्रश्न है उनको बोलते हुए भी शर्म आती है, कोई बताते नहीं है कि क्या कौन सा प्रश्न मुनि। हालांकि ये जो प्रश्न है वो हमारी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, वास्तव में हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए। तो प्रयत्न करिए, मैं आपका इतना साथ दे रही हूँ, कृपया साथ रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।